ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूं।
यहां हम प्रयोजनभूत सात तत्वों की बात कर रहे हैं। हमने देखा था कि यह जीव अनादि से ही मिथ्यात्व 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 पर्याय रूप परिणमता हुआ, अब यह मनुष्य में मनुष्य पर्याय में आया हुआ है। जो अनादि का जो मिथ्यात्व है, जिसको किसी ने सिखाया नहीं है, उसको अगृहित मिथ्यात्व कहते हैं। निसर्गतः ही वो पाया जाता है। जीव जहां जन्म लेता है उस शरीर को ही मैं हूं मान लेता है। वो सिखाने की जरूरत उसे नहीं पड़ती है। तो ये जो अगृहित मिथ्यात्व है, तो अभी यहां तो मनुष्य बन गया तो और उसने तरक्की कर दी। यहां तो कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र जो कल्पनाओं में ही बहुत सारे निर्माण हुए हैं, और उनका उपदेश भी ये सुनता रहता है, और उसके कारण उसका ये गृहित मिथ्यात्व कहलाता है। अगृहित था, उसको और पुष्टि मिल गई और नई नई विपरीत मान्यता इसने कर ली है। यहां हम देखते हैं आपका पृष्ठ संख्या गुजराती में कौन सी थी, सेकंड पेज ऑफ
125
सेकंड पेज से। हमने सुबह वो बड़ा पैराग्राफ पढ़ा था कि वस्तु व्यवस्था अर्थात तत्वों का सत्य स्वरूप, वो है ना उसके आगे वाला। अन्य पशु पंछियों को तो केवल अगृहित मिथ्यात्व है, परंतु मानव जाति ने यहां भी अपना वर्चस्व दिखा दिया। किसमें? मिथ्यात्व में। अगृहित मिथ्यात्व तो था ही, ऊपर से गृहित मिथ्यात्व को अंगीकार करके वह तीव्र मिथ्यात्व भी हुआ है। देव के संबंध में उसने कुछ गलत कल्पनाएं अन्य के उपदेश के अनुसार धारण की। वो पुस्तकें भी पढ़ता है अन्य मतियों के साथ, उसकी ये धारणा, और यानी ईश्वर ही करता है, वही अपने सुख दुख का कुछ करता हरता है और उसी का फल वही देता है, या ईश्वर नया नया अवतार लेता है, ऐसी सारी मान्यता उसने कर ली है। सत्य बात यह है कि इस मानव जीवन में करने लायक एक ही बात है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति एवं वितरागता की वृद्धि। सम्यक दर्शन यानी अपने स्वरूप की पहचान। मैं स्वयं जीव हूं और ये शरीर से भिन्न हूं। राग मेरे में उठने वाले विभाव भाव है। जैसे शरीर में रोग होता है तो जीव उसको अपने शरीर का अंग नहीं मानता, जल्दी से जल्दी उसको दूर करके ठीक होने की बात उपाय करता है। वैसे ये रागादि भाव उत्पन्न होना कुछ अच्छी बात नहीं है, वो अपना स्वरूप नहीं है। ऐसे जब पहचान लेते हैं, रोग होते हुए उससे मैं भिन्न हूं, इसको निकाल बाहर करूं, ये छोड़ने योग्य है, इसके इलाज करने योग्य है, ये तो हम जानते हैं। वैसे ही राग द्वेष अभी है पर्याय में, उसी काल में ये मेरे से भिन्न है, मैं तो ज्ञानमय हूं, ऐसे उसको सोचना चाहिए। ऐसे जो कैसे सोचेगा कि पहले में पहले वैसे उपदेश उसको प्राप्त होगा। तत्वों की बात हम सीखेंगे तो तत्व के भाषा में हम अभी यहाँ सारा जिनेन्द्र भगवान ने जो उपदेश दिया है, कोई भी ग्रंथ आप निकालिए, समय सार है, अन्य ग्रंथ है, उसमें तत्वों की भाषा में बताते हैं। इसलिए प्रथम तत्व क्या है, उसका क्या लक्षण है, उसको देखते हुए हम बढ़ेंगे आगे। तो यहाँ कहते हैं कि इस मानव भव में, मानव भव की क्यों बात बता रहे हैं, अब शाम को जो हम देख रहे ना चार गतियां हैं, अभी इंद्रिया वगैरह, उसमें हम देखते जाएंगे कि मानव भव प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ में दुर्लभ बात है। सभी प्रकार से दुर्लभ है। और शास्त्राभ्यास की मुख्यता तो इसी में है। अन्य गतियों में सम्यक दर्शन तो हो सकता है, परंतु वो पहले के वहां संस्कार भी हो सकता है, पहले की कुछ उसके देशना लब्धि में पूर्व भव की देशना भी हो सकती है। तो यहाँ जो मुख्यता है शास्त्राभ्यास की, ऐसे अन्य गतियों में कम है वो, इसलिए कहते हैं यहाँ करने योग्य पहले में पहले कार्य कौन सा है, अपने आत्मस्वरूप की पहचान यानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति, और उसी से वीतरागता उत्पन्न होगी। वीतरागता की उत्पत्ति होने के बाद भी बारंबार आत्मा में एकाग्र होने से वीतरागता की वृद्धि होती रहती है, जिसको हम चारित्र कहते हैं। समझ में आया? पहले में पहले अपने को पहचानना है, पहचान को कर अपने में ही एकाग्र होगे तो आत्मा का अनुभव होगा, और फिर उसके बाद क्या है, आत्मिक रस आत्मिक आनंद की उपलब्धि होती है, तो बाह्य का रस अपने आप कम हो जाता है, और बारंबार स्वरूप के अनुभव की दशा में जीव रहना चाहता है और रहता भी है, और उसी से उसकी एकाग्रता बढ़ते बढ़ते वो आनंद भी बढ़ता चला जाता है। उसी को कहते ये चारित्र है। चारित्र यानी चरना, आत्मा में लीन होना, उसको कहेंगे चारित्र। उसी से ये वीतरागता की वृद्धि होती है ऐसा कहेंगे। आपके यहाँ गुण और पर्याय की बात हुई है ना अपने यहाँ पर, तो सम्यक दर्शन ये कौन से गुण के पर्याय है? हाँ शीला बेन, जीव द्रव्य हुआ, जीव द्रव्य के कौन से गुण की है? ज्ञान है, श्रद्धा है, चारित्र है। हाँ, ज्ञान गुण को तो हम सम्यक ज्ञान कहेंगे, चारित्र गुण को हम वीतरागता कहेंगे।
दर्शन गुण की तो
हाँ, दर्शन यानी श्रद्धा गुण,
श्रद्धा गुण की।
वो ज्ञान दर्शन वाला दर्शन नहीं लेना नहीं। देखो देखो, दर्शन शब्द दो बार आते हैं, एक तो ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग कहते हैं ना, तो ज्ञान होने के पहले हमारे लिए दर्शन होता है, यानी ज्ञान, हम किसी चीज को जानते हैं, तो हम आपकी ओर देख रहे थे, फिर हमने इस चीज की ओर देखा, वहां से लक्ष्य छोड़कर इसको, तो इसकी ओर लक्ष्य जाते ही वो क्या है वो समझने आने के पहले में पहले वहां जो कोई पदार्थ का अवभासन होता है, उसका ग्रहण होता है सामान्य रूप से, ये पदार्थ इससे भिन्न है ऐसा कुछ नहीं भासित होता, इसका अस्तित्व ख्याल में आता है, उसको कहते हैं दर्शन। वो ज्ञान दर्शन वाला दर्शन है। और जब हम सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन कहते हैं, वो श्रद्धा गुण की बात है। समझ में आता है पूर्वी? जब हम सम्यक दर्शन कहते हैं तो सम्यक यानी यथार्थ सही क्या है, दर्शन यानी श्रद्धा, सही श्रद्धान। पहले हम मिथ्यात्व को क्या कहते थे, विपरीत श्रद्धान यानी उल्टी मान्यता, अब ये कही सच्ची मान्यता, राइट बिलीफ। तो यहां कहते हैं कि अपने करने लायक एक ही बात है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति यानी सम्यक दर्शन होना, और वीतरागता यानी चारित्र गुण की बात है, वृद्धि होना यानी चारित्र में बढ़ोतरी होना, चारित्र यानी बाह्य क्रिया नहीं,
अपने में दृष्टि
अपने स्थिर हो जाना, ध्यान अवस्था जो है, आत्मा की अनुभव रूप जो दशा है उसमें जैसे कहते हैं उंडान थी, अधिक स्थिरता होना, उसको कहते हैं चारित्र। इन्हें हमें वीतरागता की प्राप्ति करना है, वीतरागता की वृद्धि करना है, कैसे होगी? अपने आप में स्थिर होने से। वो कैसे होगा? तो उपयोग जो अन्यत्र भटक रहा है वो अपने में केंद्रित होगा, तो वो कैसे केंद्रित होगा?
बार-बार उसी का विचार करना,
तो विचार करने से नहीं होगा, उसके विचार तब आएंगे कि उसकी महिमा लगेगी,
इसका स्वरूप जानने का।
हमारा रस यानी रुचि बाहर है,
तो इसका स्वरूप जानेगा, तो
स्वरूप जानेगा, उसकी महिमा आएगी और अपनी तीव्र लगनी लगेगी, तो उपयोग अपने आप पहुंच जाएगा, सहज होगा। हमारी रुचि बाहर पड़ी है, ये देखो वो देखो वो देखो वो देखो, हम और हम यानी तीव्र रुचि बाहर है, बाहर की नहीं देखना वो बात नहीं है, ज्ञान तो सबको जानेगा, पर को भी, इसको भी, उसको भी, सबको जानेगा। जैसे हम घर के कर्तव्य सब करते रहे ना, घर का काम चलता रहेगा, परंतु तब भी अपने अपने स्व की रुचि लगेगी तो ही उपयोग अपने को पकड़ेगा। जब तक रुचि बाहर की है तब तक उपयोग का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की पर्याय नहीं जानना जानना जानना। अब ये ज्ञान जान रहा है, जैसे हमारे पास कोई कैमरा है या आईना है, दर्पण है, तो हमें अपना मुख देखना है तो हम इधर 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 सब जगह घुमा रहे हैं, इसको दिखेगा कि नहीं अपना मुख नहीं। और ऐसा करेंगे तो दिखेगा। ऐसे ये जो ज्ञान की पर्याय है वो अपने को जानने में लगाएंगे तो अपना ज्ञान होगा। तो उसके लिए ये तत्व की भाषा हम सीखेंगे अभी। तो प्रत्येक जैन शास्त्र में इसी बात का उपदेश दिया है। श्रावकाचार ग्रंथों में भी, ये श्रावकाचार क्या होते हैं, श्रावक के आचार, ये आचार ग्रंथ, जिसको हम कल देखा था हमने, चरणान योग के ग्रंथ। हमें लगता है चरणान योग ने आचार के ग्रंथ है, यानी कैसे भगवान को नमस्कार करना, कैसे उपवास करना, कितने करना, क्या क्या क्रिया करना, अरे वो तो समय दर्शन होने के बाद की बात है। सबसे पहले में पहले क्या करना है तो समय दर्शन की प्राप्ति। हमें लगता है आचरण यानी कुछ क्रिया करना वो आचरण है, परंतु जानना, आत्मा को पहचानना, आत्मा में स्थिर होना, ये क्रिया है कि नहीं है पहले इसको देखें। आत्मा की क्रिया आत्मा में होगी, शरीर की क्रिया भिन्न है, एक साथ दोनों की क्रिया हो सकती है। यहां जीव की भी चल रही अपने से जानना देखना और शरीर की भी क्रिया होती है। हम क्या मानते हैं, ये शरीर की क्रिया मेरी है और मैं ही इसको कर रहा। जैसे यात्रा कर ली, पहाड़ चढ़ के उतर गया, उपवास किया, यानी क्या किया, कुछ नहीं खाया, ये किया, तो ये हमारी क्रिया हो गई ऐसा मानता है। हमने क्या किया उस काल में,
जानने
का कार्य किया। किसको जाना, यात्रा करने की जो क्रिया हुई उसको भी जाना, और यात्रा करने का भाव हुआ उसको भी जाना। तीन बातें होती है हर समय, एक तो ज्ञान जानने का कार्य करता है, उस समय कुछ शुभ परिणाम होते हैं कुछ अशुभ परिणाम होते हैं उसको भी जानता है, और उसी समय शरीर की क्रिया भी चलती है उसको भी जानता है। देखो कोई किसी ने दान दिया, बाहर शरीर के हाथ की क्रिया हुई, किसी के उस समय में शुभ भाव हो गए, किसके अशुभ भाव भी हो गए। हो आप कहेंगे क्या बात करते हैं, दान की क्रिया चल रही है और अशुभ भाव कैसे हो गए। तो दान दे रहा है, जब बड़ी सभा है तब अपना नाम घोषित करेगा, ये मेरी तरफ से इतना है, और फिर देखेगा कौन कौन मेरे पास देखते मेरी तरफ देख रहा है, मेरा जरा नाम हो जाए ना। तो उसके मन में किस लिए पैसे दे रहा है, अपना नाम होने के लिए। तो ये तो उसके अशुभ भाव चल रहे उस काल में, दान देकर अपने मान प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता है, ये मान कषाय का पोषण कर रहा है। तो हम कहेंगे वो उसके अशुभ भाव रहे। किसी के शुभ भाव हो गए कि सच्चे दिल से वो दान देना चाहता है कि अपने कारण कुछ प्रभाव ना हो जाए, जिन मंदिर बंधे जाए, शास्त्र छपे और बटे, ये चाहता है, ये तो उसके सहज शुभ भाव है। परंतु वो दोनों चीजें भिन्न है, कौन सी, शरीर की क्रिया और शुभ भाव। हम कौन है, ज्ञानमय है, तो ज्ञान को ज्ञान रूप से जानते रहेंगे तो हमें ये अलग भासित होंगे। इसको दूर नहीं करना है, जीव क्या करते हैं, इसको रोकने की चेष्टा करते हैं, ये कषाय हो रहे ना इसको रोक दूं, ये अशुभ हो रहे ना इसको शुभ कर दूं, इसी में लगे रहते। पहले में पहले क्या सोचना है, ये जो कोई हो रहा है होते हुए को भिन्न जानना है, जानना है ना, पहचानना है ना, उसको दूर करने की कोशिश करना है नहीं, नहीं है को बदल कर दूसरे लाने की कोशिश करना है। देखो लोग क्या कहते हैं, हमें अच्छे परिणाम करना चाहिए। अब देखते अच्छे परिणाम कौन से हैं, अशुभ भाव से बंद होता है क्या, होता है, और शुभ भाव से होता है, यानी दोनों ही अच्छे नहीं है मोक्ष के लिए, बराबर है ना। तो हमें अच्छे परिणाम करना चाहिए, एज इफ परिणाम अपने हाथ में है। अगर आपके हाथ में है तो वो क्यों करते हो, करना है तो वितराग भाव ही करो ना, समझ में है ना। जीव क्या करना चाहते है, अशुभ छोड़कर शुभ करना चाहता है और मानता है मैंने अच्छे परिणाम किए। परिणाम करना आपके हाथ में होता तो दोनों को ही छोड़ दो ना, शुद्ध भाव करो, वैसा कोई नहीं सोचता, समझ में है ना। वो तो होते हैं और होते हुए को हमको भिन्न पहचानेंगे और अपने स्वरूप में ज्ञान भाव में स्थिर रहेंगे तो ये उत्पन्न ही नहीं होगे, तो हम कहेंगे इसको छोड़कर उसने अपने ज्ञान को ग्रहण किया। छोड़ना और ग्रहण कुछ हाथ पैर तो है नहीं कि जिसके द्वारा ज्ञान को कोई हाथ पैर होते है क्या। तो आत्मा ग्रहण करेगा या छोड़ेगा राग द्वेष को, तो कैसे छोड़ेगा,
चेंज हो गया।
हाँ, अभी तक क्या हो रहा था, वो राग और ज्ञान को एक में करके मान रहा था, जान रहा था। अब कैसे जानेगा, हो है वो है पर्याय में, अब वो ऐसा जानेगा दोनों भिन्न है। इसके लिए राग को छोड़ना के ग्रहण करना कुछ नहीं करना, भिन्न जानना, और जानने के बाद क्या होगा, ये ज्ञान की उसको मुख्यता आएगी। तो ज्ञान को ज्ञानमय हूं ऐसा जानता रहेगा तो ये तो अपने आप मंद पड़ने वाला ही है, तो आगे के समय में उत्पन्न ही नहीं होगा उस मात्रा में, उसनी तीव्रता में, बिल्कुल पूर्ण वितरागता को एक झटके में नहीं होगा। कल बात आई थी ना, आत्मा को जान रहे शुद्ध उपयोग में है, उस काल में भी मंद राग चल रहे है, जिसको क्या नाम दिया था याद है।
हाँ,
नहीं नहीं नहीं
नहीं, मन सिवाय,
हाँ हाँ, अबुद्धिपूर्वक वो चल रहा है वहाँ, पर अभी उसका लक्ष्य छोड़ दिया है ना, तो वो अबुद्धिपूर्वक में गया। कहाँ लक्ष्य दिया, ज्ञान में, ज्ञान में एकाग्र हुआ, ये राग द्वेष मंद पड़े है वहाँ है, अभी उसका लक्ष्य छोड़ दिया, तो लक्ष्य छोड़ दिया उसको कहते छोड़ दिया, क्योंकि पूर्ण नष्ट हो जाएंगे तो वितराग कह लेंगे हम उसी समय। अभी तो चौथे गुण स्थान में आया है तो वितरागता कहाँ है, शुरुआत हो गई है, तो उसको क्या कहेंगे, राग को छोड़ा और ज्ञान का ग्रहण किया। ये भाषा होती है शास्त्र की, पूर्वी समझ में आता है। तीन बातें देखी, एक तो मैं ज्ञानमय हूं, जानना जानना कार्य चल रहा है, अपने में ही राग द्वेष पुण्य और पाप उत्पन्न हो रहे हैं, उसी समय शरीर की भी क्रिया चल रही है। तीन बातें कौन सी, एक ज्ञान की क्रिया चल रही है, एक राग की और एक जड़ की, शरीर की, शरीर जड़ है। पहले हमारी भूल क्या, ये शरीर मैं हूं और मैं ये क्रिया करता हूं ऐसी मान्यता, वो तो खोटी मान्यता है। अब इससे हटकर ये तो सभी अन्यमति भी कहते शरीर भिन्न है मैं भिन्न हूं, परंतु ये जो राग और ज्ञान है उनमें जो भेद है वो तो भगवान तीर्थंकर भगवान ने ही बताया, ये मार्ग
राग जुदा और ज्ञान जुदा।
हाँ, राग जुदा, ज्ञान जुदा और मैं जुदा, ऐसा ज्ञान ने मैं, ज्ञान को मैं पना स्थापित करना है, तो मैं भिन्न हूं और राग भिन्न है, पहले विचार में तो लेगा नहीं, इसे अनुभव कुछ अलग बात होती है, परंतु पहले विचार दशा इस रूप चलेगी। तो यहां कहते हैं श्रावकाचार ग्रंथों में भी सर्वप्रथम सम्यक दर्शन अधिकार है, अधिकारिणी चैप्टर है, सबसे पहले चैप्टर का नाम है सम्यक दर्शन अधिकार। आपके पास वो रत्नकरण श्रावकाचार होगा, उसमें भी पहला अधिकार का नाम है सम्यक दर्शन अधिकार, दूसरे अधिकार का नाम है सम्यक ज्ञान अधिकार, और फिर उसके पश्चात सम्यक चारित्र अधिकार है। जिसको सम्यक दर्शन हुआ है ऐसे श्रावकों के जीवन में कैसी कैसी क्रियाएं पाई जाती है, परंतु उसकी कथन कैसे ये करना चाहिए, तो वहां कहेंगे देव पूजा गुरुपास्थि स्वाध्याय संयम स्तप दानम चेती गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। ये षट कर्मणि छह क्रियाएं प्रतिदिन श्रावक के होती है, कौन कौन सी, देव पूजा,
देव पूजा
यानी भगवान का स्वरूप सच्चा जानकर उनकी जो हमारे उनके प्रति जो भक्ति भाव है उसको हम देव पूजा। गुरु की उपासना का अर्थ होता है गुरु के द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है उसको ग्रहण करना। यहाँ गुरु यानी जो निर्ग्रंथ मुनिराज है उनको गुरु कहा है। स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये गृहस्थ की छह कर्म बताए, छह आवश्यक कर्म बताए, करने योग्य कार्य बताए। परंतु ये सम्यक्त्व के बिना हो गए तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कल आपने वो जीरो इकट्ठा किए थे ना मिंडा मिंडा, देखो ये पहले सम्यक दर्शन अधिकार है, क्योंकि श्रावक का सर्वप्रथम कर्तव्य, कर्तव्य ने करने योग्य सबसे टॉप प्रायोरिटी किसकी है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना, यही एकमात्र है। और वही सबसे आसान बात है। लोग क्या कहते हैं, वो ऊपर के लेवल की बातें हमें नहीं सिखाना, हमें अपनी लेवल की बात बताओ। तो ये सबसे पहले में पहले करने की बात है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को ही धर्म अर्थात मोक्ष मार्ग कहते हैं। हमने देखा है हमें सबका प्रयोजन, प्रयोजन ने एम हमारा गोल क्या है, मोक्ष। हमें कहीं जाना है तो उस मार्ग पर चलकर पहुंचेंगे। जैसे आपको यहां ये कौन सा है, मायामी है, और यहां से आपको जाना है कोई भी नाम ले लो, अभी हमें तो सभी एक जैसे ही, हाँ कहाँ जाना है,
ओरलैंडो,
ओरलैंडो जाना है, तो कौन से मार्ग से जाएंगे, मायामी ओरलैंडो, वो मार्ग कहलाएंगे ना ओरलैंडो का रास्ता। ऐसे मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है ना, मोक्ष अवस्था प्रकट करनी है तो रास्ता है ना, उसके पूर्व की अवस्था कौन सी होगी उसको कहेंगे मोक्ष मार्ग। तो ये बाहर का तो मार्ग, उसमें तो यानी नाम लिखा है, ये मोक्ष मार्ग कहाँ होगा, बाहर या अंदर, क्योंकि मोक्ष जीव की अवस्था है, मोक्ष मार्ग भी जीव की ही अवस्था है जो मोक्ष के पहले होती है। तो ये जो मोक्ष मार्ग है वो क्या है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र,
तीनों की एकता।
हाँ तीनों की एकता, तीनों एक समय में प्रकट होते हैं, तीनों की एकता, उसको कहेंगे मोक्ष मार्ग। ये तत्वार सूत्र नाम का अपना एक ग्रंथ है, आचार्य उमा स्वामी ने लिखा हुआ है, उसमें पहले ही पहले सूत्र में लिखा है, सबसे पहले में शुरू क्या है ग्रंथ की शुरुआत, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग, ये तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। उसी की बात अब यहां हमने देखने वाले हैं, ये सम्यक दर्शन क्या है उसकी चर्चा भी चलेगी, सात तत्वों की बात उसी में से हम सीखेंगे। तो ये सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, ये सम्यक शब्द हर एक को लगाना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर मोक्ष मार्ग है। तो सम्यक दर्शन क्या है, तो आचार्य आगे कहते हैं, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ है ना तत्व, तो समझिए हम समझेंगे, अर्थ है ना पदार्थ और उनका श्रद्धान, कि पदार्थों का श्रद्धान, जो पदार्थ जैसा है उसका जो भाव है उसको वैसा ही उसको श्रद्धान करना, उसको हम सम्यक दर्शन कहेंगे। तो ऐसे कौन से पदार्थ है, तो आप कहेंगे पुस्तक को पुस्तक कहना या मानना, रोटी को रोटी मानना, क्या इसको हम तत्वार श्रद्धान कहेंगे, हाँ नहीं, क्योंकि हमें तो सात तत्व कौन से, जिनको जाने बिना सच्चा सुख उत्पन्न नहीं होगा। तो ये सात तत्व जो अभी हम कहेंगे उसको समझेंगे, जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रय तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व, मोक्ष तत्व, ये जो तत्व कहे हैं इनका जो श्रद्धान है, सही मान्यता है, उसी को सम्यक दर्शन कहेंगे। अब ये जो सम्यक दर्शन है उसकी परिभाषा अन्य अन्य ग्रंथों में अन्य अन्य भाषा में दी है, अर्थ सबका एक ही है, तो उसका समन्वय कैसे है क्या है वो भी देखेंगे हम। अभी हमने कौन सी परिभाषा देखी, शीला बिन याद है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। आप कहेंगे आपने तत्व सुना दिए, हमने मान लिए, हमारी श्रद्धा हुई, इसको श्रद्धा नहीं कहते। दौलत राम जी ने छड़ाला लिखी ना, उसमें लिखा है तत्वों का कैसा श्रद्धान, जो का त्यों श्रद्धान। जो का त्यों का अर्थ क्या है, जैसे बताया है उसी प्रकार से श्रद्धान। हमने तो रट लिया पुस्तक में से, परंतु वहां तो लिखा है कि आश्रय जो है राग द्वेष के परिणाम है, दोनों शुभ और अशुभ दोनों ही दुखमय है। आश्रय है वो दुख रूप भाव है, परंतु क्या हमने उसको माना कि नहीं माना, तो हमने सही श्रद्धान नहीं किया। तो ये कैसा सही श्रद्धान होता है और कैसा उल्टा होता है, उसकी अभी विस्तार से चर्चा चलेगी अपनी सातों ही तत्वों के संबंध में। अब ये जो उमा स्वामी ने बताया तत्वार्थ सूत्र में, क्या बताया, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। आचार्य समंत भद्र नाम के एक आचार्य हो गए, उन्होंने रत्नकरण शावकाचार नाम का एक ग्रंथ लिखा है, उसमें वे कहते हैं सम्यक दर्शन किसको कहा उन्होंने, तो सच्चे देव गुरु और शास्त्र के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा। क्या कहा रंजन बेन, किसको कहा, सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा। उन्होंने श्लोक लिखा है, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु श्रद्धानम परमार्थानम आत्म आगम तपोवृता। में से दो अलग अलग श्लोक में लिखा है उन्होंने कि सम्यक दर्शन ज्ञान और वृत्तानि यानी चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनको मिलकर धर्म कहा है। किसने, धर्मेश्वरा, धर्म के ईश्वर ने, अभी हमारे जिनेश्वर भगवान जो है, जिनेन्द्र भगवान है, तीर्थंकर है, उन्होंने धर्म किसको कहा, तो कहते सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धर्म कहा, उसी को मोक्ष मार्ग कहेंगे। हो जो धर्म नहीं उसको क्या कहेंगे, हाँ अधर्म कहेंगे। तो वीतरागता या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो धर्म है, तो जो शुभ शुभ भाव वो क्या हो जाएंगे, अधर्म। शुभ भाव को भी अधर्म कहा है, किसने, हम आपने नहीं, भगवान ने बताया। और वहां क्या कहते हैं, श्रद्धान जो सम्यक दर्शन है वो किसको कहेंगे, तो श्रद्धानम परमार्थानम आप्त आगम तपोभृताम। आप्त यानी अरिहंत भगवान, आगम यानी अरिहंत भगवान ने बताया हुआ जो शास्त्र जिसको हम कहते हैं भगवान की वाणी, उसको आगम कहते हैं। और तपोभृत यानी मुनिराज, तो जैसे भगवान ने मुनि का स्वरूप कहा है, वैसे जो मुनिराज है उनको कहते तपोभृत। दूसरी भाषा में सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चा शास्त्र, इनका सही श्रद्धान, उसको सम्यक दर्शन कहा है। तो मेरा प्रश्न है, अभी किसको मानना, उमा स्वामी को क्या समंत भद्राचार्य को? एक ने कहा तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन, और एक ने कहा सच्चे देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान हो सम्यक दर्शन, किसको मानना, अभी कौन सच्चा है?
दोनों
एक ही है, भाषा अलग अलग है,
अपेक्षा है, अपेक्षा डिफरेंट, अपेक्षा,
अपेक्षा भी डिफरेंट नहीं है। उसमें से उनके कहने का प्रयोजन एक ही है, नाम उन्होंने अलग अलग दे दिए, वो कैसा सेम है उसको देखेंगे हम। आपने अंग्रेजी में मदर कहा और हमने हिंदी मराठी में माता कहा, हा? एक ही बात है ना। तो तुम्हें कदाचित संभ्रम होगा कि तत्वों के श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन करना चाहिए कि सच्चे देव गुरु शास्त्रों के श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन। कौन सा सम्यक दर्शन करना, तत्वों का श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन करना कि देवगुरु शास्त्र के श्रद्धान वाला सम्यक दर्शन करना? यानी ये प्रश्न पूछने वाले के भ्रम चल रहा है अभी। वो मानता है कि सम्यक दर्शन कोई अलग अलग होते होंगे, उनके अकॉर्डिंगली कुछ अलग सम्यक दर्शन, और इन आचार्यों का उनके मत से कोई अलग समय दर्शन, तो ऐसा है नहीं। तो अरे दोनों एक ही है, तत्वों का स्वरूप जानने पर यह बात तुम्हारे ध्यान में आ जाएगी। यह कैसे एक है वो अभी नहीं समझेंगे। तो जब हम तत्वों का क्या लक्षण है वो जब समझेंगे, तब ये दोनों की बात समान कैसे, वो बाद में फिर दोबारा इस विषय पर आएंगे। जो मोक्ष तत्व की श्रद्धान में देव का श्रद्धान गर्भित है, ये जो बातें है ना, वो उस पर आएंगे हम बाद में। तो दोनों भिन्न बातें है नहीं, ये समझाने का तरीका अलग अलग है, तो वो अभी हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले आवश्यक नियम तो यह है कि ये तत्व किसने बताने होने चाहिए, अरहंतों ने यानी जिनेन्द्रों ने बताए हुए तत्व ही होना जरूरी है। तो तत्व क्या और भी किसी ने बताया है? हाँ, हरेक जो मान्यता है ना, जिसको हम दर्शन कहते हैं, दर्शन ने मत जो धर्म का नाम दिया है, जैसे कोई सांख्य मती है, कोई चारवाक है, कोई बौद्ध मती है, तो इन्होंने अपने अपने अलग अलग तत्व बताए हैं। ये सांख्यमती नाम के उन्होंने तो कोई 25 तत्व बताए, एक प्रकृति, एक पुरुष है, और वो अन्य अन्य कुछ न कुछ ऐसे बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें की। अन्य भी जो कोई बौद्ध मती वो भी कुछ अन्य ही बताते। कोई तो ऐसे है कि आत्मा भिन्न है और ज्ञान भिन्न है, और वो ज्ञान आकर आत्मा से जुड़ता है और फिर आत्मा जानता है, यानी आत्मा ज्ञान बिना का है और ज्ञान बाहर से आकर चिपकता है। ये ऐसी ऐसी मूर्खता भरी मान्यताएं हैं, उनके तत्व भी अत्यंत विपरीत है। इसलिए सर्वप्रथम कंडीशन क्या है, हम कहेंगे हम भी तत्व का श्रद्धान करते हैं जो हमारे शास्त्र में लिखा है, वैसा नहीं चलेगा। जिनेन्द्र भगवान ने बताया हुआ जो सच शास्त्र है, तत्वों का जो स्वरूप बताया है, वे ही होने चाहिए। आपके अपने अपने अन्य अन्य तत्व होंगे वो नहीं चलेंगे। तो ये पहली में पहली बात, क्योंकि अन्य मतियों में भी उनके अपने तत्व है और वे भी हम आपको मुक्ति दिलाते हैं ऐसा दावा करते। कोई भी धर्म ऐसा नहीं कहता कि मैं तुमको नरक में ले जाऊंगा, हरे क्या कहते हैं, हम आपको मुक्ति दिला देंगे।
और हम आप हमको नहीं मानेंगे तब नरक में जाओगे।
हाँ, आप नहीं मानोगे तो ऐसा भी कहते, आप हमारी शरण में आ जाओ फिर हम आपको मुक्ति दिला देंगे। कंडीशन क्या है, हमारी शरण में आ जाओ तो ही हम आपका भला कर देंगे। यानी कोई दूसरा किसी अन्य का भला कर देगा, उसकी पर्याय पलटा देगा, ऐसी इनकी मान्यता है। जिसको उपदेश देना है वो कंडीशन क्यों डाले, ख्याल में आता है ना। तो क्या कहते हैं कि प्रत्येक ऐसा ही कहते हैं, ये हम आपको मुक्ति दिलाते हैं। आपको शायद मालूम होगा, ये भूतबीत की कहानी बताते हैं, और फिर वो भूत आया, क्या किया वो, उसने मेरा बुरा किया था, फिर उसका बदला लिया, बदला पूर्ण हो गया, वह अब मुक्त हो गए। ऐसे उनकी चलती है ना, मिथ्या भ्रमणाएं चलती रहती है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में, सुबह हमने लिया था ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक, उसमें जो पांचवा अधिकार है उसका नाम है विविध मत समीक्षा। विविध मत ने अनेक जो अन्य अन्य प्रकार के मत है, जैसे हम कौन है, जैन है, जैनेतर भी बहुत सारे मत है, वेदांत है, बौद्धिक है, चारवाक है, जैमिनिक है, वैशेषिक है, बहुत सारे जो हमने कभी नाम भी नहीं सुने हैं। टोडरमल जी उन सभी शास्त्रों का अभ्यास किया, उन्होंने उनके ग्रंथों का अभ्यास किया, उन लोगों को भी पता नहीं होगा इतनी सूक्ष्मता से उसका वर्णन किया है, और वर्णन करके वो खोटा कैसा ये भी बता दिया है। तो वो कितने बुद्धि के धारक हो गए, जैन तत्वों का तो अभ्यास किया ही किया है, अन्य दर्शनों का यानी अन्य मतों का भी अभ्यास करके वहां प्रस्तुत किया है। ये फिलोसफी के स्टूडेंट होते हैं ना, ये जो जैन दर्शन का अभ्यास चलता है, अन्य भी मतों का, उनको सभी फिलोसफी सीखने पड़ती है। 6 दर्शन होते हैं, जैन है, बुद्ध है, वेदांत है, हाँ, कंपेरेटिव सबकी स्टडी करनी पड़ती है। परंतु वहां कॉलेज में ऐसा नहीं बताएंगे कि ये सच्चा है ये झूठा है, बस ये इनका मत है, इतना ही प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ क्या किया है उन्होंने, 5वां अध्याय पढ़ने पर विस्तृत जानकारी मिलेगी, क्योंकि वहां अन्य मतों की क्या श्रद्धा है और वो विपरीत कैसी है, ये सब बातें वहां बताई हैं। छोड़ाला में कहा है, ये छोड़ाला नाम मालूम है आपको?
दौलत राम जी,
हाँ दौलत राम जी ने लिखी हुई छोड़ाला, उन्होंने कहा है तातई ने इसलिए जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, यानी पहले ढाल में बहुत सारा दुखों का वर्णन किया है और उसमें से छूटने के लिए बताया है कि जिनेन्द्र भगवान ने बताए हुए तत्वों का अभ्यास करना चाहिए। जीवों को उपदेश देते हैं कि दुख से दूर होना है तो मिथ्यात्व के कारण जीव भटक रहा है, तो मिथ्यात्व को दूर करने का उपाय क्या है, क्योंकि हम तो मिथ्यात्व की अभी महिमा देख रहे हैं, मोह की महिमा है, और ये अनादि से उसको जकड़े हुए है, यानी जीव ही अपना मिथ्यात्व नहीं छोड़ता है, तो उसके लिए कैसा प्रयत्न करना चाहिए, उसके लिए क्या उपाय है, तो कहते हैं कि जिनेन्द्र भगवान ने बताए हुए तत्वों का अभ्यास करना चाहिए। अब यहाँ लिखते हैं, ये प्रयोजनभूत सात तत्व हैं। तो इसके बारे में हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठेंगे। हाँ हाँ, मुझे पता है कि अब तुम प्रश्नों की बरसात करोगी कि तत्व का मतलब क्या है, यानी तत्व व्हाट इज तत्व, प्रयोजन यानी क्या, दूसरा प्रश्न, प्रयोजन तत्व का अर्थ क्या है, तीसरा प्रश्न, वे साथ ही क्यों है, ज्यादा या कम क्यों नहीं है, और उनके नाम क्या है, क्योंकि अभी है ना सुनने वालों को ऐसा हो जाता है, अरे जल्दी बताओ ना, एक साथ ही क्यों है, प्रयोजन क्या होता है, तत्व क्या होता है, तो उसका भी हम अर्थ देखते हैं कि तत्व यानी तत् प्लस त्व, ये संस्कृत शब्द है, तत् यानी वह और त्व यानी उसका वह पना। कल हमने बात देखी थी ना, कोई वृद्ध है उसमें क्या है, वृद्धत्व, माता है उसमें मातृत्व, ये जो है तो वस्तु का वह भाव, जिस वस्तु की हम बात कर रहे हैं उस वस्तु का उसका वह भाव, अपना भाव, जिसकी अभी जब हम जीव तत्व कहेंगे, अजीव तत्व कहेंगे, आश्रव तत्व कहेंगे, उसका जो भाव, उसका जो स्वभाव, उसका जो कोई स्वरूप है, उसका जो कोई नेचर है, उसका जो कोई हम कहें नहीं डिस्क्राइब इट कैसा है, तो वो जो उसका भाव कहेंगे हम उसको, उसकी विशेषता, तो वस्तु का जो भाव है, उसका जो वस्तुपना है, उसको हम तत्व कहेंगे। अभी हमने देखा ना वृद्धत्व यानी वृद्धपना, मातृत्व यानी मातृपना इत्यादि। प्रयोजन का क्या अर्थ होता है, तो प्रयोजन यानी उसका कारण, जैसे बच्चे स्कूल में गए, क्या प्रयोजन है वहां जाने का, पढ़ने के लिए गए। शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तो शिक्षक का प्रयोजन क्या है, पढ़ाना, विद्यार्थी को पढ़ाना, ये प्रयोजन है। हम रोज सुबह से लेकर शाम तक दुकान में जाकर बैठते हैं, तो घर में क्यों नहीं बैठते, दुकान में जाने का प्रयोजन यानी कारण क्या है, तो पैसा कमाना, ये हमारा प्रयोजन है। तो हम भोजन करते हैं रोज दो बार, तो भोजन करने का प्रयोजन क्या है, भूख लगी है तो उसका निवारण करना, पेट भरने के लिए हम भोजन करते हैं, तो प्रयोजन का अर्थ क्या हुआ, कारण, उसका हेतु, क्यों करते हैं उसको कहेंगे, इसका प्रयोजन क्या है। हाँ, तो ये प्रयोजन का अर्थ ख्याल में ले लेंगे, हमारा क्या प्रयोजन है तो वो हम फिर देखेंगे कि सुखी होना हमारा प्रयोजन है, भोजन भी करते हैं सुखी होने के लिए, पैसा भी कमाते हैं सुखी होने के लिए, विद्यार्जन भी करते हैं स्कूल में जाकर पढ़ते, वो भी सुखी होने के लिए, क्यों, क्योंकि पढ़ेंगे लिखेंगे बड़े हो गए फिर हम जॉब कर सकते हैं, कुछ अपना धंधा कर सकते हैं, वो मार्ग सही है नहीं है, क्या करना है नहीं, उसकी बात नहीं है, हम यहाँ शब्दों का अर्थ पहले देख रहे हैं। तो प्रयोजन यानी उसी का दूसरा नाम है हेतु यानी कारण। किसी विद्यार्थी से पूछा आपकी पढ़ाई का प्रयोजन क्या है, वह कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, यह मेरा प्रयोजन है। व्यापार करने वाले का प्रयोजन है धन प्राप्त करके धनवान बनना। भोजन करने वाले का प्रयोजन है भूख मिटाना। तो प्रत्येक जीव उसका प्रयोजन दुख दूर करने का अर्थात सुखी होने का है। मैं सुखी हो जाऊं इसके लिए वो सारी बातें करता है। तो हमें अभी यहाँ प्रयोजन भूत तत्व किसे कहना वो देख रहे ना। तो हमारा भी प्रयोजन क्या है, दुख दूर करना और सुख की प्राप्ति करना। तो कहते ऐसी जो बातें हैं कि जिनका ज्ञान प्राप्त करके और जिनकी दृढ़ श्रद्धा प्रतीति, प्रतीति का अर्थ क्या है, ये बात ऐसी ही है अन्यथा नहीं है, दोनों ओर चाहिए। जैसे हम किसी को पूछेंगे ये रंग कौन सा है, हरा है, लाल नहीं है, पीला नहीं है, काला नहीं है, दोनों ओर से हमने देखा ना इसको, ये हरा ही है अन्य नहीं है। तो ये तत्व ऐसे ही है अन्यथा नहीं है, ऐसा पक्का निर्णय विश्वास हुए बिना हमारा दुख दूर नहीं होगा। क्या कहते हैं, यह परिभाषा चल रही है डेफिनेशन, प्रयोजन भूत तत्व किसको कहना, तो तत्व यानी वस्तु का जो भाव है उसको तत्व कहेंगे। तो प्रयोजन भूत यानी अपना कारण क्या है उसके लिए जो वस्तु का भाव उसको हम जानेंगे। हमारा प्रयोजन है सुखी होना, दुख दूर करना। तो ऐसी बातें जिसको हम प्रयोजन भूत तत्व कहने वाले साथ, तो ये कैसी है कि उनको जाने बिना और वे ऐसे ही है अन्यथा नहीं है, ऐसी श्रद्धान किए बिना सुख प्राप्त ही नहीं होगा और हमारा दुख दूर नहीं होगा। दूसरी भाषा में सम्यक दर्शन नहीं होगा, उसको क्या कहेंगे, प्रयोजन भूत तत्व। अब इसकी परिभाषा में फिर पढ़ूंगी पुस्तक में से कि ऐसी जो बातें हैं, किस संबंधी बात चल रही है, प्रयोजन भूत तत्व के बारे में, वे ऐसे हैं कि जिनका प्राप्त करके और जिनकी दृढ़ श्रद्धा इन्हें प्रतीति, कैसी, ये बातें ऐसी ही है अन्यथा नहीं, ऐसा पक्का विश्वास यानी निर्णय हुए बिना हमारा दुख दूर नहीं होगा। यानी प्रयोजन भूत तत्वों का, सात तत्वों का ज्ञान हुए बिना और श्रद्धा हुए बिना हमारा दुख दूर नहीं होगा और हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। उन बातों को क्या कहेंगे हम, प्रयोजन भूत तत्व। अब वो साथ ही क्या है, उनके नाम क्या है, उसकी बातें हम कल देखेंगे। बोलो चौबीसों भगवान की जय।